समझ में आ जाए तो परमार्थ को समझना कठिन नहीं होगा। मैं जब भी सोचता हूं परमार्थ के बाबत तब तब सांसारिकता ख्याल में आ जाती है। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अगर हम जुड़ जाएं, अगर हमारी आत्मीयता हो जाए, हमारे जीवन में बड़ा भावात्मक परिवर्तन होता। हम कभी उसके प्रति नाराजी व्यक्त नहीं कर पाते, हम हमेशा उसके प्रति क्षमा ही धारण करते। हम उसके प्रति कभी कठोर नहीं हो पाते, हम उसके प्रति कोमलता ही भावों में लाते हैं। ये सब मनायास उसके सामने राई रत्ती अपना सब कुछ प्रकट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतनी सरलता कहां से आ जाती है?
तुम उसे तैयार मुझसे
क्या कर दिए?
मार्दव आर्दव भाव हैं। ये भाव जैसे ही आते हैं जीवन में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुखद लगता है, बड़ी पवित्रता लगती है। फिर हम उस व्यक्ति के प्रति कभी भी अपने मन को खराब नहीं कर पाते। कभी सोचा आपने, इतनी सारी चीजें एक साथ किसी एक व्यक्ति के प्रति आत्मीयता हो जाने से आ जाती हैं? कितना आसान काम होता है। पर ऐसा ही अगर प्राणी मात्र के प्रति हमारे जीवन में आ जावे तो उसी का नाम तो परमार्थ का धर्म है। और कोई अलग से धर्म की बात करनी है क्या? और जब ये सारी चीजें जिस क्षण अच्छी लगने लगती हैं, लगता है कि ऐसा ही जीवन चले, वो जो जिस तरह से जी रहे थे, नाराजी में जी रहे थे, सम्मान की आकांक्षा में जी रहे थे, और ये जो टेढ़ा मेढ़ापन जीवन में छल कपट आ गया था उसमें हम जी रहे थे और बड़ी विकृतियों में जी रहे थे, वो सारा जीवन तो झूठा जीवन है। पहली बार जब ये चारों चीजें जीवन में आती हैं तो मालूम पड़ता कि सच्चाई तो ये है, सच्चा तो जीवन ये है, वो जो कषायों से युक्त होकर के मैं संस्कार वश जैसा जी रहा था वो जीवन तो झूठा जीवन है। और जब ऐसी सच्चाई जीवन में आ जावे तब जरा सा भय भी उसके साथ में आ जाता है। किसी से जुड़ो भैया तो उसके बाद भय भी आता है। बड़ी सांसारिक चीजें हैं, इनको थोड़ा सा परिवर्तन कर दो तो पारमार्थिक हो जाती। आज क्या कर रहे सब लोग? थोड़ा सा कंसंट्रेशन मेरा बना रहे, ऐसा कुछ उपाय अपन कर ले। थोड़ी देर ही बोलूंगा, ज्यादा देर की उतनी मेरी नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है कि ज्यादा देर बोलूं। बस थोड़ी देर में मैं खत्म कर दूंगा, आपको परेशानी नहीं होगी ज्यादा। नाहक परेशान काहे को हो आप भी। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि थोड़ा सा सांसारिकता से हट करके जब हम सोचते हैं तो वही परमार्थ हो जाता है। इतनी सारी चीजें जो हम किसी से जुड़ते तो इस बात का भय लगता है कि अभी जैसा चल रहा है उसमें कोई व्यवधान ना आ जावे, वो टूट ना जावे। बड़ा सावधानी रखते हैं हम जब भी किसी से संबंध जोड़ते हैं, ऐसा ही तो ये है। ऐसी ही सावधानी जब हम रखना शुरू करते जीवन में, जब सच्चाई एक बार आ जाती है, जब ये मालूम पड़ जाता है कि वास्तविक जीवन तो ये है, जीवन का आनंद तो इसमें है, ये आनंद मेरा हमेशा बना रहे, ये आनंद खो ना जाए, इसके लिए जब हम सावधानी रखना शुरू कर देते हैं, उसी सावधानी का नाम तो संयम है भाई, और कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। सावधानी रखना, वो सारे विचार जो हमारे मन को कल तक विकृत करते थे वो सब के सब अब फिर से हमारे पास ना आ पावे। सम्यक यमो संयम, हम भली प्रकार से अपने लिए नियंत्रित कर लें, इसी का नाम तो संयम है। अच्छी प्रकार से नियंत्रित करना, नियंत्रण तो कई प्रकार से हो जाता भाई। नियंत्रण तो द्वेष पूर्वक भी हो जाता, नियंत्रण तो स्वार्थ पूर्वक भी हम अपने ऊपर कर लेते, नियंत्रण तो दूसरे के दबाव में आकर के भी हम कर लेते हैं, लेकिन वह नियंत्रण यहाँ पर उपयोगी नहीं है। यहाँ तो आत्म नियंत्रण की बात है, सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात है। यहाँ तो अपने को अपने आप, दूसरा कोई अंकुश लगाए इससे पहले अपने ऊपर अंकुश लगा लेना, इस तरह का नियंत्रण है, ताकि फिर से कोई क्रोध का भाव पैदा ना हो जाए, ताकि सम्मान की कोई आकांक्षा फिर से ना आ जाए, ताकि फिर से मन विकृत ना हो जाए, मन जटिल ना हो जाए, इस चीज के लिए, और ये सच्चाई जो जीवन में आई है वो खो ना जाए, इस चीज के लिए हम चारों तरफ अपने नियंत्रित हो जाते हैं, संयमित हो जाते हैं, इसी का नाम आज के दिन अगर अपन समझें तो उत्तम संयम है। ऐसा ये उत्तम संयम आत्मनियंत्रण हमारे जीवन में कैसे आवे? अब ऐसा लगता है कि हम नियंत्रित हो जावेंगे तो बड़े परतंत्र हो जाएंगे, लेकिन भाई नियंत्रण अगर दूसरे के द्वारा लगाया गया हो तो परतंत्रता आती है, लेकिन जो नियंत्रण स्वयं के द्वारा लगाया गया हो उसमें परतंत्रता नहीं आती। परतंत्रता तो हमारी बहुत पुरानी है, जो कि हम संस्कारों से परतंत्र हुए हैं, उन संस्कारों पर विजय पाने की परतंत्रता क्या? उन संस्कारों से मुक्त हो जाना ही तो संयम है, उन संस्कारों पर नियंत्रण प्राप्त करना। फिर कैसे कैसे वह किसी का ये कहिएगा कि दबाव कैसे हो सकता है उस पर किसी का, या कि वह बंधन कैसे हो सकता है? वह तो मुक्ति का ही उपाय होगा। और इसके लिए कभी आपने जीवन में देखा हो कि कैसे ये सारी चीजें आती हैं और कैसे ये सब कुछ होता है, कभी थोड़ा सा गौर किया हो? लेकिन हम लोग गौर नहीं करते। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने एक संस्मरण में लिखा कि वो अपनी खिड़की के पास आधी रात बैठे हुए और कविता लिख रहे थे, आधी रात थी, कविता लिख रहे थे और कंडील जली हुई थी, मोमबत्ती जला करके रखी थी, उसके प्रकाश में लिख रहे थे। भाई अब जैसा प्रकाश उस समय नहीं था, लेकिन अब जैसा अंधेरा भी उस समय नहीं था। हाँ, उस समय का अंधेरा भी कुछ दूसरा ही रहा होगा, मुझे तो ऐसा लगता। कंडील में काम चल जाता था, आंख बड़ी तेज थी और लिख रहे थे कि अचानक हवा का झोंका आया और कंडील बुझ गई। कंडील बुझ गई तो सोचा कि अब तो लिखना हो नहीं पाएगा, कैसा करेंगे, लेकिन लिखते हैं अपने संस्मरण में कि तब पहली बार मालूम पड़ा कि खिड़की से आने वाली चांदनी में भी लिखा जा सकता है। तब पहली बार मालूम पड़ा हम तो कंडील जली हुई थी तो जो चांदनी अनायास बरस रही थी हमारे ऊपर, उस चांदनी का अनुभव भी हमें नहीं था, लेकिन जिस क्षण हमें अपने जीवन में ये सारे बाहर के झोंके, ये सब बाहर की जितनी भी रोशनी हमें, हमने सोचा था कि बाहर से जो रोशनी आती है, इन क्रोध करने से जो रोशनी मिलती है या कि सम्मान की आकांक्षा से हमें रोशनी मिलती, ये सारी रोशनियां जब हमने बुझा दी तब मालूम पड़ा कि वो तो कोई भीतर का प्रकाश आपो आप चांदनी में दिखाई पड़ने लगा है। चांदनी जैसी आ गई वैसा ही भीतर का प्रकाश ऐसा ही है भाई, संयम के द्वारा ऐसा होना संभव होता है, लेकिन आत्मनियंत्रण कैसे करें, इतनी छोटी सी बात अपन को समझने की है। ये तो सब जो है ना भूमिका उमिका की बातें हैं, मुख्य मुद्दे की बात है कि आत्मनियंत्रण करें तो कैसे करें। दुनिया भर के कितने उपाय हमें बताए जाते हैं, हम तो आज दो ही उपाय बताते कि भैया संकल्पित होएं और समर्पित होएं तो आत्मनियंत्रण होना से हम दो ही उपाय हैं आत्मनियंत्रण के, संकल्पित होना और समर्पित होना। कौन पहले करें कौन बाद में करें, ऐसे ऐसे झगड़े में नहीं पड़ना कि पहले संकल्पित हो कि पहले समर्पित हो। भाई दोनों चीजें संकल्प के लिए समर्पित हो, समर्पण के लिए संकल्पित हो। संकल्प के प्रति समर्पण होना चाहिए और समर्पण के प्रति संकल्पित होना चाहिए, दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं, ये दोनों दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। हम अपने जीवन में हमारे 10 प्राणों से जीते हैं, नियंत्रण किस पे करना है, 10 प्राणों पर नियंत्रण करना, और ये प्राण कहे गए हैं इनका हम लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं, इनका सम्यक उपयोग कर लेना इसी का नाम तो संयम है। मन का सही उपयोग करना, वचन का सही उपयोग करना, इस शरीर का सही उपयोग करना, ये जो इंद्रियां मिली हैं इन पांचों इंद्री का सही उपयोग करना, ये जो मनुष्य आयु मिली है इसका सही उपयोग करना, और ये आती जाती जो सांसें हैं इन सांसों पर संभाल करके इनका उपयोग करना, इनका दुरुपयोग नहीं कर लेना, इसी का नाम तो संयम है। और कोई बड़ा भारी काम करना है और इन सब पर अगर हम भगवान का नाम लेना शुरू कर दें इन सब पर, तो ये सबके सब संयमित होना शुरू हो जाते हैं, ये सबके सब हमारे नियंत्रण में आना शुरू हो जाते हैं। हमें संकल्पित होना चाहिए कि हम अपने 10 प्राणों का सम्यक उपयोग करेंगे, हम अपने 10 प्राण जो हमें मिले हैं इनको बर्बाद नहीं होने देंगे, हम इनका कोई ना कोई सही उपयोग कर लेंगे। हमें शरीर से कोई बुराई मोल नहीं लेनी है, हमें मन को कहीं सप्रेस नहीं करना, रिप्रेस नहीं करना है, कहीं दमन नहीं करना है, और ना ही हमें वाणी को चुपचाप ऐसे पट्टी लगा करके नहीं बैठना है कि एक टेप लगा ली सुनने बो लेने का चूह है, ऐसा नहीं है। इनका सम्यक उपयोग कर लेना, कछु आंख खोल लेने से मोक्ष नहीं हो जाता कि ने देखे हमने कछु हुई है। नहीं भाई, देखना सीखना, कैसे देखा जाता है, भगवान का रूप भी उसी आंख से देखा जाता है और संसार का रूप भी उसी आंख से देखा जाता, भगवान की वाणी भी उसी कान से सुनी जाती और किसी की बुराई भी उसी कान से सुनी जाती। ये तो हम इसके लिए स्वतंत्र है कि हमें क्या करना है, भगवान की वाणी सुननी है इन कानों के द्वारा या कि दूसरे की निंदा सुननी है। इतना इतना नियंत्रण हमारा हो जावे, और इस नियंत्रण के लिए बड़ा समर्पण चाहिए, किसी के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। मैंने तो पहले भी आपसे कहा था, कई बार कहा है कि भैया अकेले चलना बड़ा सरल है, उसमें किसी की नहीं माननी पड़ती। अकेले चलना हो तो अपने मन की जितनी करनी हो कर सकते, लेकिन किसी के साथ में चलो तो थोड़ी मुश्किल खड़ी होती है कि उसके मन की रखना पड़ेगी, अपने मन की तो रखना ही पड़ेगी, उसके मन की भी रखना पड़ेगी, तो ये तो थोड़ा और कठिन है। लेकिन सबसे कठिन तो ये है कि किसी के चरणों में जाकर के माथा रख देना और उसके पीछे पीछे चुपचाप चले चलना, अपने मन को उसके कदमों में रख देना, ये तो बहुत मुश्किल है। चुपचाप चला नहीं जाता, मन कहता कि कुछ कह लो, ऐसा कैसे आपने मान लिया? ये तो सब अंधविश्वास है, किसी के कहे में चले जा रहे। नहीं भाई, समर्पण वो अंधविश्वास वाली स्थिति नहीं है। अरे समर्पण तो जीवन में हमारे सब खो गया हमारे जीवन में। पहले तो छोटा सा बच्चा भी मां के प्रति समर्पित होता था। देखो सवेरे जागने का संकल्प ले लेवे हैं कि परीक्षा है और जागना है, तो क्या कहता शाम को सोने से पहले? हम भी तो यही कहते थे बचपन में कि देखो मां, सवेरे जागने के लिए संकल्पित हूं, पढ़ने के लिए संकल्पित हूं, लेकिन ऐसा है कि अगर ना जाग पाऊं तो उठा लेना। सोने से पहले हमने कह दिया है कि देखो अगर ना जाग पाऊं तो उठा लेना। मैं तो जाग पाऊंगा ही नहीं, क्योंकि अनादि काल का संस्कार है, रोज देर से ही उठने का संस्कार है मेरा, इसलिए मैं उठ तो नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उठा लेना। अब तो हमारे पास घड़ी आ गई, अलार्म आ गई, क्यों झुके हम, क्यों किसी से कहें? हाँ भाई, अब तो सब मापदंड बदल ही गए, घड़ी के सामने झुकने की कोई बात ही नहीं होती। माँ के पास तो जाकर के प्रेम से दो शब्द कहना पड़ेंगे। सो हमने घड़ी में अलार्म भर के रख दी, और जब अपनो मन हुए तो जब उठो, और अब तो घड़ी ऐसी है कि बटन दबा दी सो बंद रही, या उस बथोड़ी कैद कचो तो उठ ही जाओ। अब ऐसी बन भले ही गई है कि आधा घंटा बचते रहेगा, तुमने उठो तो दूसरे बटन लगे दे दबा दो सो चुप हो जाए। लेकिन जिसके प्रति समर्पित हुए हैं वह चुप नहीं होगा, वह तुम जब तक नियंत्रित नहीं हो जाओगे तब तक वह चुप नहीं होगा, जब तक जाग नहीं जाओगे तब तक वो जगाता ही रहेगा। द्वार पर दस्तक सदा जो देता रहा वो देवता, मैं तो उसे देवता मानता हूं जो कि अगर मैं जाग गया हूं या सो गया हूं ये देखने के लिए मेरे दरवाजे पर नॉक करता रहता, दर्शक दस्तक देता रहता है, वो हमारा आत्म देवता तो वास्तव में वही है जो हमें स्वयं जगाता रहता। फिर हम ये भी कह देते कि देखो मां, अगर हम नहीं जागे और अगर इनकार करें जागने से तब भी तुम जगा लेना, और हम जागते समय तुम्हें कुछ कह भी देंगे, ऊंचा नीचा भला बुरा कुछ भी कह देंगे तो नाराज मत होना, लेकिन जगा ही लेना। बस परमार्थ में भी इसी तरह कोई व्यक्ति अपने पांचों इंद्री, मन, वाणी और शरीर को संयमित करने के लिए, इन पर नियंत्रण पाने के लिए जब भी संकल्पित हो, उसकी पहली जरूरत है कि वो किसी के कदमों में जाकर के अपना माथा रख दे कि हमसे तो इन सब का नियंत्रण हो पाएगा नहीं, मगर कोशिश हमारी है कि नियंत्रण हम करेंगे। तुम लेकिन जगाते रहना, तुम नियंत्रण करवाते रहना, इतना ही काम तो गुरु का है। संयम के क्षेत्र में पहली जरूरत गुरु की पड़ती है, और गुरु के प्रति एक बार समर्पित जो हो जाता है उसके जीवन में संयम आना शुरू हो जाता। हम लोग तो पता नहीं, शायद आज तक या तो किसी गुरु को नहीं ढूंढ पाए हैं, या फिर शायद हमारा अभी समय ही नहीं आया। हमें किसी गुरु का इंतजार है, हमें किसी समय का इंतजार है, हम सोच रहे हैं ना, हम सोच रहे सब के लेना तो है, लेकिन सोच लेवे। बिना सोचे विचारे संयम ले लेने से क्या होता? अरे बिना सम्यक दर्शन के सम्यक चारित्र होता है क्या? देखो नहीं होता। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गए तो ही फिर कछु क्रिया करो तो कार्यकारी है, नहीं तो नहीं है कार्यकारी। अरे भाई तो इतनी तो दुनिया जान रही, तुम जान रहे, तो अब सोच तो रही, तो अब सम्यक दर्शन हो तो गो तो मैं जितनी जान दे बारे को तो सम्यक दर्शन है और का है, अब ले लो। लेकिन अभी भी नहीं है, अब लेंगे, हम सोच रहे। एक युवक था, नई नई शादी हुई थी उसकी है, तो नई नई शादी हुई थी और दोनों जन जाते थे सुनने के लिए मुनि महाराज जी के प्रवचन सुनने के लिए जाते थे। सो एक दिन अकेला युवक ही गया सुनने के लिए, घर में कुछ काम था, सो ये अपने काम में लगी हुई थी। सो युवक वापिस लौटा, जब लौट करके आया तो कपड़े बदल रहा था, उतने में ही जो है जीवन साथी ने आकर के कहा, कह रहे काय सुन आए, कह रहे हम भी बहुत दिन से सुन रहे और सोचते हैं कि कुछ थोड़ा सा संयम ले लेते, हम बहुत सोचते कि थोड़ा संयम ले लेते। तो युवक को हंसी आ गई, कपड़े उतार रहा युवक को हंसी आ गई, कह रहे तुम तो हंसते हो, हम थोड़ी मजाक में कह रहे, हम तो सही कह रहे। तुम ये सोच रहे हैं कि हम संयम नहीं ले सकते, हम ले सकते लेकिन हम सोच रहे हैं कि ले लिए। युवक ने कहा कि मैं इस बात से नहीं हंस रहा हूं, मैं तो ये सोच रहा हूं कि संयम लेने और सोचने का क्या संबंध, अरे लेना हो तो ले लो, नहीं लेना हो तो कहो कि नहीं लेना। सोच रहे हैं इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नहीं लेने का भाव भी विद्यमान है, सोच रहे हैं इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नहीं लेने का, नहीं लेने की बात भी भीतर में है। अगर लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो कहो मत लो। अब तो जो है जीवन साथी को अच्छा नहीं लगा कि ले सुनो, क्या इतना सरल है संयम लेना? अरे सोचे विचारे बिना कोई संयम ले सकता है क्या? इतना सरल थोड़ी है, तुम भी तो रोज सुनते हो कोई एकदम कहे और तुम ले सकते क्या संयम? अब ऐसा कह दिया तो कपड़े उतार तो चुका था, अब तो तुरंत के तुरंत मन में आया, और कहते हैं कि युवक दरवाजे खोल करके बाहर निकलने लगा। अब ये घबराई कि क्या करते हो, मैंने तो ऐसे ही कहा था मजाक मजाक में और तुमने तो ये क्या, कहां चले, ठहरो थोड़ा। बोले बस हो गया, निर्णय ले लिया, आप सोचना क्या उसमें ज्यादा। और जाकर के मुनि महाराज जी के पास सारी की सारी घटना दोहरा दी, पीछे पीछे जीवन साथी भी आ गई और उसी के सामने कहा कि मेरी बात मेरे ऊपर ही लागू हो गई, मैं भी बहुत दिन से आपको सुन करके सोचता था लेकिन आज मेरी बात मुझ पर लागू हो गई कि जब लेना है तो ले लो ना, नहीं लेना तो कहो कि नहीं लेना है, रोका किसने है लेने से? जब हम किसी को मृत्यु से रोक नहीं पाते तब हम किसी को संयमित होने से क्या रोक सकेंगे? कौन रोकता है यहाँ पर किसी के लिए? जब हम किसी को मरते हुए को दो सांसें नहीं दे सकते, रोक नहीं सकते, तो किसी को संयमित होने से कोई कहाँ रोकता है? ये तो हमारी मन की चालाकी है, मन के बहाने हैं कि हम ही संयमित नहीं होना चाहते और बहाना बनाते कि हम सोच रहे हैं कि हम संयमित होंगे। भाई संयम लेने में शरीर की शक्ति कोई काम नहीं करती, शरीर की शक्ति काम नहीं करती, शक्ति तो काम करती है मन की और भावनाओं की शक्ति काम करती है। तीनों बल मिले हुए हैं, शरीर का बल थोड़ा कम भी हो लेकिन मन का बल हो अगर तो आदमी को संयमित होने में ज्यादा देर नहीं लगती। बद समिधि पालनाए दंड चायेन इंद्रिय जयेन, बद समिधि पालनाए दंड चायेन इंद्रिय जयेन परिणम मानस ही पुनो संयम धम्मो हवे नियमा। ऐसा आचार्य महाराजों ने लिखा है कि व्रत समिति का पालन करना, मन वचन काय की प्रवृत्ति का त्याग करना और इंद्री विजय करना, ये जिसके लिए होते हैं वो संयम धर्म से युक्त जानना चाहिए। अब व्रत क्या चीज है भाई, हम अगर समझाने बैठे तो 3-4 महीने तो हो गए, पांचों पापों से विरक्त हो जाने का नाम ही तो व्रत है। तो श्रावक के व्रत हैं ले लो, और मुनि के व्रत हैं सो मुनि बनना हो गए सो वैसी कहो, सो मुनि के व्रत हैं सो वैसा कर लो। संयम लेना हो तो व्रत पालन करना पड़ेंगे, समितियां पालन करना पड़ेंगी, मन वचन और काय को संभालना पड़ेगा, इन सब की प्रवृत्ति को संभाल करके और हम संयम ग्रहण कर सकते। ज्यादा और बात करने की मेरी हिम्मत नहीं है, बस इतना ही कहता हूं कि डरना नहीं चाहिए, करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए। जीवन में जब तक नियंत्रण नहीं है तब तक वो जीवन ऐसा ही बीतता चला जाएगा। छोटे से छोटा भी संयम अगर हम ले सकें तो ले लेना चाहिए, छोटा सा भी संयम। अगर जीवन में सत्य का दर्शन हो गया है तो, नहीं तो नाहक है बात, हम आपसे नहीं कहते कि आप लो। जीवन में अगर ये लगने लगा हो कि हाँ आवश्यक है, मुझे नियंत्रण जरूरी है, वो उसको नियंत्रण करते, एक तो मित्र आ जावे और बहुत पुराना हो गए। कितना सरल है हमारा नियंत्रण करना, ज्यादा कठिन नहीं है। एक मित्र हो जा आ जावे, बहुत पुराना आया है, वर्षों के बाद आया है, उसके साथ में मिलने बैठने में ही घंटों गुजर जाते हैं, ना भूख की याद आती, ना प्यास की याद आती है। को पूरा दिन बातचीत में निकल जावे, को दुकान में बैठे हुए हैं, ग्राय की चल रही है, तो भूख प्यास इत्यादि की सबकी वेदना कहाँ चली जाती पता भी नहीं लगता। भाई ऐसे ही अगर मुझसे पूछते हो तो जब संसार के प्रेम में हम इतनी सारी चीजों पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो क्या हम परमात्मा के प्रेम में बाकी सब चीजों पर नियंत्रण नहीं पा सकते हैं? लेकिन सवाल तो ये है ना कि भगवान के प्रति हमारा अनुराग हो, भगवान के गुणों की प्राप्ति के प्रति हमारा अनुराग हो। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, जिनेन्द्र भगवान की संपत्ति मुझे प्राप्त हो गए, ये सब संपत्ति तो बहुत प्राप्त कर ली, तब फिर जीवन में संयम लेने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। सबसे आसान है इस प्रकार संयम लेना, संयम ही तो परमहंस के समान है। शॉर्ट में हम आपको कह दें, संयम ही तो परमहंस के समान है। हंस क्या करता, कंकर पत्थर फैले हों लेकिन उनके बीच से हीरा चुभता। दुनिया में कंकर पत्थर फैले हैं लेकिन उसके बीच से हीरा हमें चुभना है, ये हमारा संयम है। और सार को ग्रहण करता है, असार को त्याग कर देता है, दूध को ग्रहण कर लेता, पानी को छोड़ देता है। जो सारभूत है यहाँ पर संसार में, उस सारभूत को हमारे ग्रहण करने की आकांक्षा हो जाए, उस सारभूत को ग्रहण करने की अगर दृष्टि बन जाए और हम ग्रहण करना जीवन में शुरू कर दें, तो यही तो हमारे संयमी होने का तरीका है। और तीसरी बात जो हंस की बहुत वैशिष्ट्य होता है हंस का, वो सबको नहीं मालूम, हंस पानी पर भी तैर सकता है, हंस जमीन पर भी चल सकता है। बड़ी प्यारी चाल होती है हंस की, बड़ा तैरना भी बड़ा अच्छा होता है, और आकाश में भी हंस उड़ लेता है। थ्री डायमेंशन है, एवरी डायमेंशन, हर डायमेंशन में हंस, कहीं बंधा नहीं है हंस। जो जितना संयमी है वो हर दिशा में उतना ही मुक्त है, शायद इससे बड़ी स्वतंत्रता और कुछ नहीं होती। हम तो नियमों के विरुद्ध चल चल के और बंधते चले जाते हैं। प्रकृति के नियम है, सांस लेने तक का नियम है, शरीर का अपना नियम है, मन के अपने नियम है, इंद्रियों के अपने नियम है, इन नियमों के अनुरूप चलने लगने का नाम संयम है। लेकिन हम तो इन नियमों के विरुद्ध चलते हैं, और हमारा अहंकार है कि हम क्यों सौगंध खावें, कि हम फलानी चीज करेंगे, ये तो बंधना हो गया। नहीं भाई, नियमों के विपरीत चलना बंधना है, नियमों के अनुकूल चलना बंधना नहीं है। पानी की तरह हमारा मन है, मन में भी हम तैर जावें, मन की गुलामी ना करें हम, मन के ऊपर हमारा वर्चस्व हो, पानी में भी जैसे हंस तैरता है, जमीन की तरह तो ये शरीर है, हम जमीन पर भी चल लेता है, इस शरीर में भी हम गुजरे तो देह में विदेह की तरह हम गुजर सकते हैं। ये जलते भिन्न कमल की स्थिति श्रावक की भी हो सकती है, साधु की तो होती ही है, होनी ही चाहिए। और आत्मा और चेतना आकाश की तरह है, जहाँ की कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने को सिर्फ छोड़ देना पड़ता है और पंख रोक देते हैं तो ऐसे तैरते चले जाते हैं। आकाश की ऊंचाइयाँ चेतना की ऊंचाइयाँ हैं, हम चाहे चेतना की ऊंचाइयों में विचरण करें, चाहे शरीर में विचरण करें, चाहे मन में विचरण करें, तीनों में हम संयमित हों, तीनों में हम नियंत्रण पूर्वक चलें, तो यह परम अंश की जैसी दशा होती है वैसी ही दशा हमारी होगी। और भाई आखिरी बात एक और कह करके, वो कहानी याद आ गई तो उसको सुना करके बात खत्म करता हूँ, कि संयम ले लेने के बाद बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। शुरू शुरू में तो ऐसा लगेगा कि हमसे नहीं होता पहले तो, और देखो ऐसा है, ज्यादा सोच विचार नहीं करना कि हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, पर सोचोगे क्या? जिस चीज को भी करके ही नहीं देखा उसके बारे में सोचना क्या, जब करके देखो नहीं बनेगा तो देखेंगे। लेकिन जब ले लोगे संयम तो ऐसा नहीं लगेगा कि नाहक ले लिया, ये लगेगा कि अच्छा ले लिया, चलो अच्छा हुआ संभल गए। शुरू शुरू में तो पापों से बचना मुश्किल लगता है संयम में, लेकिन जैसे जैसे हम पापों से बचना शुरू कर देते हैं, अभ्यास करना शुरू कर देते, संस्कार टूटना शुरू हो जाते, और जैसे जैसे पुराने संस्कार टूटते हैं, फिर तो स्थिति ये आती है भैया कि फिर तो पाप करना मुश्किल हो जाता है। वो संयम की परम उत्कृष्ट दशा है। एक स्थिति थी जबकि सौगंध करना पड़ती थी और पाप की प्रवृत्ति से बचना मुश्किल था, एक स्थिति ऐसी आ गई जबकि पाप करना मुश्किल हो रहा है। संयम की वास्तविकता वहां जाकर के मालूम पड़ती है कि अपने वास्तविक स्वभाव को हम प्राप्त कर गए हैं। हिंसा करना हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा स्वभाव तो अपने में आत्मा में लीन होकर के आत्मा में ही रमण करने का स्वभाव है। उस स्थिति को जब प्राप्त होते तब मालूम पड़ता है, और जो इस स्थिति को प्राप्त हो जाते उन्हें दुनिया के बारे में ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। दुनिया तो ऐसी है कि सीधा भी उसका और उल्टा भी उसका। पब्लिक ओपिनियन तो ऐसे हैं, ये बात जुदी है कि सत्यमपि लोक विरुद्धम ना आचरणीयम, सत्य होते हुए भी लोक विरुद्ध का आचरण नहीं करना चाहिए, तो संयमी व्यक्ति लोक से विरुद्ध का आचरण काहे को करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी संयम ले लेने के बाद भैया सपोर्ट करने वाले लोग कम मिलेंगे, लेकिन मीन मेष निकालने वाले लोग, मीन मेष जानते, मीन राशि से मेष राशि, बारह राशि बारह तो हैं सबरे, बारहवीं राशि मीन राशि, मेष राशि पहली राशि, एरीज टू पेशी। हम सोचते थे कि मीन मेष क्या कहलाती होगी, बारह राशियों वाले जी मीन मेष, माने कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज निकाल करके डाल ही देते हैं, ऐसी दुनिया है। भर्तृहरि ने एक बार संयम ग्रहण कर लिया, संयमी हो गए भर्तृहरि, अब वो साधु हो गए। ये हमारे जैसे नहीं, संयमी हो गए अपन, ये समझ ले गए, तो वस्त्र पहने हुए हैं, सब कुछ है जैसा होता है, ये कह लो थोड़े बहुत ब्रह्मचारी व्रत वगैरह होगा, जैसा जो भी हो साधु हो गए, और जा करके जो है अपने गांव में और गांव के बाहर पेड़ के नीचे लेते थे। अब आने जाने वाले तो वहां से निकलते थे, सो आने जाने वाले ने कहा कि मैं जानते हो लेकिन मैं भी यहां भर्तृहरि राजा रहे बहुत पहले, और बड़ा इनका साम्राज्य था। सो दूसरे वाले ने कहा कि मैं हां ठीक है, लेकिन अब पथरा को मुंह तो नहीं छूटो, ये पत्थर रखे थे भी सिरहाने, अब लेते हैं तो पत्थर तो रखेंगे ही सिरहाने, तो कुछ नहीं सिरहा कि नहीं और तो सब ठीक है, मगर हते राजा तो कहा भाई, मगर अब पत्थर का लोभ नहीं छूटा। अब भर्तृहरि ने सुन लिया और मन में विचार आया कि नहीं ठीक तो कह रहे हैं, कोई गलत तो कह नहीं रहे, इसका मोह भी मुझे छोड़ देना चाहिए, इसकी भी क्या आवश्यकता है। और वो लोग आगे निकल गए और इनने जो है पत्थर एक तरफ हटा करके फिर लेट गया, और लेटे लेटे भगवान का नाम ले रहे थे। दो भाई लोग जो है फिर से वापिस लौटे, फिर से वापिस लौटे, एक ने देख लिया जिसने कहा था कि पत्थर का मोह नहीं गया, उसने देख लिया, तो दूसरे से कहता कि ना देखो हम कह रहे थे ना, इतना अहंकार है अभी, अरे हमने जरा सी कह रही थी बुरा मान गए, इन बुरा मानने की क्या, हमने तो भली कही थी, जरा सी कह रही थी बुरा मान गए, पत्थरा अलग करके वो कहने लगे सूर्य अकड़ में बिल्कुल। भर्तृहरि फिर सोच में पड़ गए कि आखिर गलती कहां हो गई, मैंने पहले पत्थर रख करके सोया था तब भी यही कहा कि देखो अभी मोह नहीं छूटा, मैंने उसको भी हटा दिया तो कहते कि नाराज हो गए, ये तो दुनिया है, हम जैसा करेंगे उसमें वो राजी होने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी तरह हमें राजी करने के लिए तैयार है, वो कहती कि जे ऐसे कैसे जीते हो, हमें तुम्हें देख करके बड़ा मुश्किल में पड़ जाते कि हम क्यों नहीं ऐसे हो पाए, इसलिए तुम भी ऐसे ही हो जाओ, हमारी जमात में आओ। तो हमारा जीना अच्छा रहेगा, और तुम्हारा अलग रहते हो तो हमें मुश्किल पड़ती है। अब लड़के लोग जो है अगर यहाँ मंदिर आने लगे कि दूसरे वाले लड़के की माँ कहती कि लड़के को फलाने को लड़का कि तू अच्छू है मंदिर जाते, तो तुम बिल्कुल नहीं जाते मंदिर, क्योंकि नजी महाराज जी और आ गए इनकी वजह से जो एक नई परेशानी। तो दूसरे को लड़का मंदिर जान लगो हम नहीं जाते, पहले कोई नहीं जाते, नहीं भी जाते नहीं, हमसे बिल्कुल बराबरी थी। ऐसी मुश्किलें दुनिया के साथ संयमी व्यक्ति के लिए आएंगी, मैं आपसे क्या कहूं, संयम लेने के बाद अगर ऐसी मुश्किलें भी आती हैं तो उनको भी आसान करने का तरीका यही है कि हम सच्ची बात पर तो गौर करें और बाकी नाहक बातों पर ज्यादा महत्व ना दें। हम ज्यादा महत्व देते हैं इसलिए बातें बड़ी लगने लगती हैं, बातों को हम महत्व न दें। जैसा हम आचरण करते हैं उसमें सच्चाई देखते चले जाएं, जहां सच्चाई से हम थोड़े से भी चुप हो जावे वहां कोई अगर हमें सजेस्ट करता है तो हम उसका सजेशन मान लें कि आपने ठीक कहा, हम इसको सुधारे लेते हैं। अपने को हमेशा संशोधित करते जाना, अपने आत्मा में नियंत्रण करते जाना, अपने इंद्री मन और वाणी को नियंत्रित करते चले जाना, बस इसी का नाम संयम है। हम सब लोगों के जीवन में संयम आवे। आज आपसे क्या कहूँ, आज तो मन है कि संयम के लिए जो आज लोग सबसे ज्यादा संयमित हैं उनके बारे में कहने का भी मन थोड़ा सा बना था कि उनके बारे में कहूँगा, कर तो नहीं पाता लेकिन जो करते हैं उनकी प्रशंसा करने में क्या जाता है। पिछले साल आचार्य महाराज ने 9 उपवास किए थे, एक संयम। आज के कलिकाल में जबकि अन्न का कीड़ा बना हुआ है शरीर, एक दिन नहीं मिले तो नहीं चलता, एक आदमी 9 दिन तक ना खाए और जीवित रह सकता, ऐसा संयम का प्रभाव है। और आज अभी कुंडलपुर में भी 9 उपवास करके योग सागर जी महाराज ने भी किए हैं, ऐसी शक्ति आज भी विद्यमान है। हमें संयम में डरना नहीं चाहिए, ये शरीर तो एक दिन छूट ही जाएगा, हम छोड़ें चाहे नहीं छोड़ें, इसको सजाएं तब भी ये दवा दे जाता है, हम इससे काम ले ले वे, ऐसी हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। मुझे उस समय याद है जब मुक्तागिरी में और 6 महीने ही तो हुए थे, मैं महाराज जी भी उस समय थे, ब्रह्मचारी थे जो भी हो उस समय, सनस्ती की बात है, ब्रह्मचारी होकर के आए थे। और कोई उस समय मुनि महाराज जी तो 3 मुनि महाराज जी थे, और दीपावली के दिन की बात है, 6 महीने ही सिर्फ हुए थे छुल्लक बने हुए, और वहां पर सुबह सुबह आचार्य जी ने बुला लिया कि क्यों इधर आओ, पहुंच गए, कटोरा ले आओ। हमने कहा सवेरे सवेरे कटोरा, आहार के समय तो कटोरा लेते हैं लेकिन सुबह सुबह कटोरा, तो कटोरा भी मंगा लिया, यहाँ रख दो, वहां रखवा लिया कटोरा, रख दो, चद्दर ओढ़े हुए थे उतार के रख, ठंड तो नहीं लगती, नहीं लगती ठंड तो नहीं लगती, हमने कहा नहीं लगती, और उतार के रख दिया। तेलक बनना है आपकी आज्ञा, लेकिन ध्यान रखना मैं जैसा कहूंगा वैसा करना पड़ेगा, मैं कहूंगा 2 और 2 5 तो 5 कहना, मैंने कहा 2 और 2 5 कहोगे तो 5 कहूंगा, 4 होते होंगे तब भी 5 कहूंगा। सवाल संकल्पित होने का नहीं है, सवाल समर्पित होने का है, संकल्पित तो बाद में भी हो लूंगा लेकिन हमारे जीवन से आज समर्पण धीरे धीरे चला जा रहा है। हम पता नहीं किस रास्ते पर, अनर्गल रास्ते पर, स्वच्छंदता के रास्ते पर चले जा रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हो गए, हम बहुत डेवलप कर रहे हैं, हम बहुत फॉरवर्ड हो गए हैं। भाई ये फॉरवर्डनेस, ये डेवलपमेंट, ये सारी चीजें यहीं की यहीं रखी जाएंगी। प्रगति आदमी के जीवन के लिए होती है, विकास आत्मा के विकास के लिए होता है, ये भौतिक विकास के लिए नहीं होता। इस चकाचौंध में भी अपने मन को जो शांति दे, ऐसे संयम और के लिए संकल्पित होना चाहिए, और अपने जीवन को गुरुओं के, सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। ताकि हमारा जीवन सुधर सके, संभल सके और हम आत्म नियंत्रण प्राप्त कर सकें। बस ऐसी भावना के साथ में आज मेरे साथ नमोकार मंत्र।
दर्शन मेरु विजय मेरु अचल मेरु मंदिर मेरु विद्युत नाली मेरु ध्रो
अक्षतम सुदर्शन मेरु विजय मेरु अचल मेरु मंदिर मेरु विद्युत माली मेरु भो
Woo!
सुवर्ण सुगंध सुहाए,
सुवर्ण सुगंध सुहाए,
फल सा पूजा श्री जिन आए, महासुख हो देखे नाथ परम सुख हो। सुदर्शन मेरु विजय मेरु अचल मेरु मंदिर मेरु विद्युत माली मेरु भ्यो
हरम।
सुमनस सोभे अधिकाई
जिन बिंबेभ्यो